रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में अंतर। बाह्य दृष्टि से देखने पर रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन एवं ध्वनि परिवर्तन में साम्य प्रतीत होता है, क्योंकि घोड़ा और ओ के योग से बने घोड़ों, कैट और ज के योग से बने कैट्ज तथा इति और आदि के योग से बने इत्यादि रूपों में ध्वनियों के अंतर्गत भी परिवर्तन उसी प्रकार आया है जिस प्रकार अग्नि से परिवर्तित आग या लैंटर्न से परिवर्तित लालटेन या निद्रा से परिवर्तित नींद शब्द में ध्वनि परिवर्तन दिखाई देता है। परंतु रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन में बड़ा अंतर है। एक तो ध्वनि परिवर्तन का क्षेत्र केवल शब्द तक ही सीमित है, जबकि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन दो या दो से अधिक शब्दों से निर्मित रूपों या वाक्यांशों में हुआ करता है। जैसे अग्नि से आग होना केवल ध्वनि परिवर्तन है, जबकि जाने दे से जान दे रूप बनना रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन है। दूसरे, ध्वनि परिवर्तन शीघ्र नहीं होता अपितु धीरे धीरे काल व्यतीत होने पर होता है, जबकि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन दो या दो से अधिक रूपों का संयोग होने पर तुरंत होता हुआ देखा जाता है। जैसे उपाध्याय से परिवर्तित झा के बनने में तो बहुत समय लगा होगा, किंतु भाग जा के भाजा होने में अधिक समय नहीं लगता। तीसरे, रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन तो प्रायः दो या दो से अधिक रूप ग्रामों के मिलने पर विशेष स्थानों पर हुआ करता है, जबकि ध्वनि परिवर्तन के लिए यह कोई नियम नहीं है। जैसे घोड़ा और दौड़, इन दो रूप ग्रामों के मिलने पर घुड़दौड़ रूप परिवर्तित होकर बना है, जिसके केवल प्रथम रूप ग्राम में ही परिवर्तन हुआ है, जबकि दूसरा रूप ग्राम जैसे का तैसा बना हुआ है। यह बात ध्वनि परिवर्तन में नहीं देखी जाती। चौथे, ध्वनि परिवर्तन में वर्ण विपर्यय भी पर्याप्त मात्रा में होता है, जबकि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन में वर्ण विपर्यय प्रायः नहीं होता अपितु वही रूपों में रूपांतर होते रहते हैं। जैसे लखनऊ का नखलऊ, जलेबी का जबेली या अमरूद का अरमूद होना तो ध्वनि परिवर्तन है, जबकि मार डाला से मार डाला, लड़की ओ से लड़कियों, रमाईश से रमेश आदि रूपों का बनना रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन कहलाता है। ग, संधि और रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन में अंतर। कुछ विद्वान संधि और रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन को एक ही मानते हैं और रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन के स्थान पर संधि कहना ही अधिक समीचीन समझते हैं। वैसे बाह्य दृष्टि से देखने पर जिस तरह संधि में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है, वैसे ही रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन भी वही होता है जहां दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर है। प्रथम अंतर तो यह है कि संधि में सदैव दो निष्पन्न एवं सार्थक शब्दों का योग होता है और उन दोनों का योग होने पर परिवर्तन होता है, जबकि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन में दो निष्पन्न एवं सार्थक शब्दों का ही नहीं अपितु एक निष्पन्न या सार्थक या दूसरे किसी प्रत्यय, परसर्ग, विभक्ति आदि के अनिष्पन्न एवं निरर्थक चिन्हों का योग होने पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे राम और अवतार के योग से रामावतार शब्द का बनना स्वर संधि है। जगत और नाथ के योग से बने जगन्नाथ शब्द में व्यंजन संधि है और तपह और वन के योग से बने तपोवन शब्द में विसर्ग संधि है। इन शब्दों में क्रमशः राम, अवतार, जगत, नाथ, तपह, वन आदि सभी शब्द निष्पन्न हैं। इनके ठीक विपरीत लड़की और ओ के योग से बने लड़कियों, लड़का और ओ के योग से बने लड़कों, नदी और ओ से बने नदियों आदि रूपों में रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन हुआ है, जिनमें से लड़की, लड़का तथा नदी शब्द तो निष्पन्न है, जबकि ओ रूप ग्राम न तो कोई निष्पन्न शब्द है और न सार्थक है, अपितु यह एक प्रत्यय है जो अनिष्पन्न एवं अनर्थक है। दूसरे, संधि में प्रायः दो संज्ञा शब्दों का ही योग होता है और उनके योग से ही तीसरा परिवर्तित रूप बनता है, जबकि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि केवल संज्ञा शब्दों का ही योग हो। यहाँ तो संज्ञा के अतिरिक्त क्रिया, परसर्ग, प्रत्यय आदि का भी योग होता रहता है और इनके योग से रूपांतर होते रहते हैं। जैसे रमाधन ईश से बना रमेश, चंद्रधन उदय से बना चंद्रोदय आदि तो संधि संबंधी परिवर्तन होते हैं, जबकि हाथ धन से बना हास्य, भाग धन जा से बना भाज्या, दूध धन दो से बना दुद्धो, मार धन डाला से बना माट डाला आदि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन है। तीसरे, संधि में तो केवल दो शब्दों का योग होने पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण में ही परिवर्तन होता है, जबकि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही नहीं प्रथम या द्वितीय वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है और द्वितीय शब्द के अंतर्गत तनिक भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रतिधन एक से बना प्रत्येक, ईश्वर धन इच्छा से बना ईश्वर इच्छा में तो केवल संधि परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन हुआ है। परंतु घोड़ा धन दौड़ से बने घुड़दौड़, बात धन रस से बने बतरस, कान धन बतिया से बने कनबतिया, कान धन कटा से बने कनकटा आदि रूपों में रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन हुआ है, जो केवल प्रथम शब्द के द्वितीय वर्ण में ही हुआ है और द्वितीय शब्द ज्यों का त्यों विद्यमान है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संधि और रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन में पर्याप्त अंतर होता है, क्योंकि संधि का क्षेत्र सीमित है, जबकि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और असीम है। इसी कारण रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन को संधि नहीं कह सकते, अपितु संधि का समावेश रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन में हो सकता है, क्योंकि संधि में जो परिवर्तन होता है वह भी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन का ही एक अंग है। रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन की दिशाएं। साधारणतया रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन की दिशाओं का निरूपण दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो परिवर्तन की स्थिति के विचार से और दूसरा रूप की दृष्टि से। क, परिवर्तन की स्थिति के विचार से। रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन के निम्नलिखित दो दिशाएं होती हैं। पहला, आंतरिक। यहाँ दो या दो से अधिक रूप ग्रामों का योग होने पर संधि स्थल से पृथक रूप ग्रामों के अंतर्गत परिवर्तन होता है, उसे रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन की आंतरिक दिशा कहते हैं। जैसे बात और रस दो रूप ग्रामों को योग से बतरस शब्द बनाए, जिसमें संधि स्थल पर तो परिवर्तन नहीं हुआ है किंतु बा में से आ का लोप हो जाने से आंतरिक परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही घोड़ा धन दौड़ से बने घुड़दौड़, मीठा धन बोलने वाला से बने मिठ बोला, हाथ धन कड़ी से बने हथ कड़ी, हाथ धन गोला से बने हथ गोला, पानी धन चक्की से बने पन चक्की, राजा धन पूत धन ई से बने रजपूती, आम धन चूर से बने अमचूर, लाख धन पति से बने लखपति, कान धन मैल से धन ईया से बने कनमैलिया, लकड़ी धन फोड़ा से बने लकड़फोड़ा, बाट धन मार से बने बटमार, पानी धन डुब्बी से बने पनडुब्बी, चिड़िया धन मार से बने चिड़ीमार आदि शब्दों में रूप ध्वनि ग्रामीय आंतरिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरा, बाह्य। जहाँ दो या दो से अधिक रूप ग्रामों का योग होने पर शब्द के अंत या आदि में अर्थात बाहर ही बाहर परिवर्तन होते हैं, उसे रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन की बाह्य दिशा कहते हैं। जैसे राम धन ईश्वर से बने रामेश्वर, सूर्य धन उदय से बने सूर्योदय, जगत धन जननी से बने जगत जननी, इति धन आदि से बने इत्यादि, यदि धन अपि से बने यद्यपि, विपद धन जाल से बने विपद जाल, उत धन गम से बने उद्गम, षट धन मास से बने षटमास, वाक धन ईश से बने वागीश, किम धन चित से बने किंचित, देवी धन आगम से बने दिव्यागम, नदी धन ऊर्मी से बने नद्योर्मी, सुधन आगत से बने स्वागत, जलधन ओघ से बने जलौध, महाधनेश्वर से बने महेश्वर्य, मतधन एक से बने मतैक्य आदि रूपों में रूप ध्वनि ग्राम संबंधी बाह्य परिवर्तन हुए हैं। ये सभी परिवर्तन संधिगत भी हैं, अतः संधि का समावेश रूप ध्वनि ग्रामीय बाह्य परिवर्तन में हो जाता है। ख, रूप की दृष्टि से। रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन की निम्नलिखित 12 दिशाएं होती हैं। पहला, समीकरण। जहाँ एक रूप ग्राम की ध्वनि के आधार पर दूसरे रूप ग्राम की ध्वनि में समानता आ जाती है, वहाँ समीकरण नामक रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे मार धन डाला से बना माट डाला, भाग धन जा से बना भाज्या, दूध धन दो से बना दुद्धो, हाथ धन से बना हास्य आदि। दूसरा, विषमीकरण। जहाँ एक रूप ग्राम की अंतिम सघोष ध्वनि दूसरे रूप ग्राम की ध्वनि में विषमता आ जाती है, वहाँ विषमीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे तटधन शिव से बना तत्शिव, सतधन शास्त्र से बना सच्छास्त्र, उतधन आर से बना उद्धार आदि। तीसरा, अघोषीकरण, जहाँ पहले रूप ग्राम की अंतिम सघोष ध्वनि दूसरे रूप ग्राम का योग होते ही अघोष ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, वहाँ अघोषीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे नाग धनपुर का नागपुर, आग धन का धनगोला से बना अक्का गोला, भाग्य धन का धन खेल से बना भक्का खेल आदि। चौथा, सघोषीकरण, जहाँ पहले रूप ग्राम की अंतिम अघोष ध्वनि दूसरे रूप ग्राम का योग होते ही सघोष ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, वहाँ सघोषीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे डाक धनघर का डाकघर, वाक धन ईश्वर का वागेश्वर, दिक धन गज का दिग्गज, षट धन रिपु का षडरिपु, अच धन अंत का अजंत आदि। पांचवा, अल्प प्राणीकरण, जहाँ पहले रूप ग्राम की अंतिम महाप्राण ध्वनि दूसरे रूप ग्राम का योग होते ही अल्प प्राण ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, वहाँ अल्प प्राणीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे दूध धन वाला का दूध वाला, हाथ धन धोलो से हाथ धोलो, भूख धन मरी से भुखमरी आदि। छठा, महाप्राणीकरण, जहाँ पहले रूप ग्राम की अंतिम अल्प प्राण ध्वनि दूसरे रूप ग्राम का योग होते ही महाप्राण ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, वहाँ महाप्राणीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे हस्ति धन शाला का हथसार, गृह द्वार का घरवार, शुष्क क्षेत्र का सूखा खेत आदि। सातवां, ह्रस्वीकरण, जहाँ दूसरे रूप ग्राम का योग होते ही पहले रूप ग्राम में दीर्घ ध्वनि ह्रस्व हो जाती है, वहाँ ह्रस्वीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे घोड़ा धन दौड़ से घुड़दौड़, भालू धन ओ से भालुओं, डाकू धन ओ से डाकुओं आदि। आठवां, दीर्घीकरण, जहाँ दूसरे रूप ग्राम का संयोग होते ही पहले रूप ग्राम की ध्वनि दीर्घ हो जाती है, वहाँ दीर्घीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे कल्प धन अंत में से कल्पांत, परम धन अर्थ से परमार्थ, रत्न धन आकर से रत्नाकर, गिरिधन ईश से गिरीश, भानु धन उदय से भानुदय, कपिधन ईश से कपीश आदि। नौवां, गुणीकरण, जहाँ दो रूप ग्रामों का योग होते ही पहले रूप ग्राम की अंत तथा दूसरे रूप ग्राम के पूर्व में गुण संबंधी परिवर्तन हो जाता है, वहाँ गुणीकरण संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे देवधन इंद्र से देवेंद्र, सूर्यधन ईश से सुरेश, महाधन इंद्र से महेंद्र, चंद्रधन उदय से चंद्रोदय, महाधन उत्सव से महोत्सव, सप्तधन ऋषि से सप्तर्षि आदि। दसवां, आगम, जहाँ दो रूप ग्रामों का योग होते ही उनके मध्य में य का आगम हो जाता है, वहाँ आगम संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे कविधन ओ से कवियों, हाथीधन ओ से हाथियों, नदीधन ओ से नदियों, भाई धन ओ से भाइयों, जाति धन आ से जातियाँ, बिरादरी धन आ से बिरादरियाँ, साली धन आ से सालियाँ आदि। ग्यारहवां, लोप, जहाँ दो रूप ग्रामों का योग होने पर मध्यवर्ती समान ध्वनियों में से एक का लोप हो जाता है, वहाँ लोप संबंधित रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे नाक धन कटा से नकटा, कथन धन उपकथन से कथोपकथन, खरीद धन दार से खरीदार, मधुधन दूध से मधुध, शष्प धन पिंजर से सस्पिंजर, स्वर्ग धन गंगा से स्वर्गंगा आदि। बारहवां, विपर्यय, जहाँ दो या दो से अधिक रूप ग्रामों का योग होने पर उनमें वर्ण विपर्यय हो जाता है, वहाँ विपर्यय संबंधी रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन होता है। जैसे हिब्रू भाषा में हिट धन शाधन मीर से बने हिस्टामीर रूप में टी के स्थान पर एस एच और एस एच के स्थान पर टी आ गई है। ऐसे ही वाराणसी से बने बनारसी रूप में नो तथा रो में भी प्रत्यय हो गया। इसी तरह ब्राह्मणी से बने ब्राह्मणी में हौ तथा मो का भी प्रत्यय हो गया है। ऐसे दाल भात के स्थान पर भात दाल, भाल दात, दाल रोटी के स्थान पर राल रोटी, चीड़ फाड़ के स्थान पर फिड़ चाड़, दौड़ धूप के स्थान पर धौड़ धूप, चाकू कैंची के स्थान पर काचू चौकी, अंगुली अंगूठा के स्थान पर उंगली गौठा आदि रूपों में विपर्यय के स्पष्ट दर्शन होते हैं। रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन के कारण। भाषाओं में जो विविध प्रकार के रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन हुआ करते हैं उनके निम्नलिखित प्रमुख पांच कारण होते हैं। पहला, प्रयत्न लाघव। अधिकांश रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तनों का कारण तो प्रयत्न लाघव या मुखसुख होता है, क्योंकि इसी के परिणाम स्वरूप रूपों में बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन हुआ करते हैं। इसी के फलस्वरूप संधि की आवश्यकता होती है और इसी के कारण रूपों का ह्रस्वीकरण या दीर्घीकरण हुआ करता है। दूसरा, शीघ्र उच्चारण। बहुत से लोग विपर्यय आदि से संबंधित परिवर्तन इसलिए हो जाते हैं कि वक्ताओं में शीघ्र बोलने की प्रवृत्ति होती है और शीघ्र उच्चारण के कारण वे कुछ का कुछ कह जाते हैं जिससे रूप बदल जाते हैं। तीसरा, सादृश्य। बहुत से रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन सादृश्य के कारण भी हो जाते हैं। जैसे लड़का का बहुवचन बनाने के लिए जब ओ रूप ग्राम लगाया जाता है तो लड़कों रूप बनता है। इसी आधार पर लड़की का बहुवचन बनाने की जब आवश्यकता हुई तब लड़की के आगे भी ओ जोड़ा गया। लड़की के अंत में ई होने के कारण अब इसका योग ओ से हुआ, तब उसका रूप लड़क्यों बनना चाहिए था, परंतु संयुक्ताक्षर को अलग करके लड़कों के समान ही पृथक पृथक वर्णों से लड़कियों रूप कर दिया गया। इसी तरह अन्य रूपों में भी सभी स्थान पर य का आगम करके और ई को ह्रस्व बनाकर रूप बनाए जाने लगे, जैसे कवियों, नदियों, गतियों आदि। परंतु इसी सादृश्य के आधार पर जहाँ शब्द के अंत में केवल दीर्घ ई आती थी वहाँ पर भी य का आगम करके तथा दीर्घ ई को ह्रस्व ई करके बहुवचन बनाने की प्रथा चल निकली, जैसे भाई से भाइयों, माई से माइयों, खाई से खाइयों, ताई से ताइयों, नाई से नाइयों, पाई से पाइयों, बाई से बाइयों आदि। वैसे यदि नियमानुसार रूप बनाए जाते तो भाइयों, माइयों, खाइयों, ताइयों आदि रूप बनने चाहिए थे, किंतु लड़कियों, कवियों, नदियों आदि के सादृश्य पर ही उक्त रूपों का निर्माण हुआ है। अतः यह सिद्ध है कि रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन में सादृश्य का भी बड़ा हाथ रहता है। चौथा, अज्ञान। अनेक रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तन के कारण अज्ञान के कारण भी हो जाते हैं। इसका मूल कारण यह है कि साधारण जनता में जो भाषा प्रचलित रहती है वह कभी व्याकरण के नियमों से नियंत्रित एवं प्रचालित नहीं होती, अपितु उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है और बिना सोचे समझे भी हुआ करता है। अतएव जनता के इन प्रयोगों में उनकी बुद्धि एवं ज्ञान कार्य नहीं करते, अपितु उनका अज्ञान बड़ा काम करता है। इसी अज्ञान के कारण मतलब का मतबल, अमरूद का अरमूद, चाकू का काचू रूप हो जाता है और इसी अज्ञान के कारण अनेक शुद्ध रूप परिवर्तित होकर बोले जाने लगते हैं, जैसे विद्यार्थी का विद्यार्थी आदि। पांचवा, असामर्थ्य। कतिपय रूप ध्वनि ग्रामीय परिवर्तनों का कारण असामर्थ्य भी है, क्योंकि असभ्य एवं अशिक्षित व्यक्ति कभी कभी शुद्ध एवं परिष्कृत रूपों का प्रयोग बोलचाल में ठीक ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वे किसी शुद्ध एवं परिष्कृत रूप का उच्चारण ज्यों का त्यों कर सकें। इससे वे रूप उनकी असमर्थता के कारण विकृत हो जाते हैं। उसी कारण लैंटर्न का लालटेन, सिग्नल का सिंगल, स्टेशन का अटेशन तथा कानमैलिया का कनमैलिया, काटफोड़ा का काटफोड़ा, राजपूती शान का रजपूती शान आदि रूपांतर हो जाते हैं।